ओम शांति। आज का होमवर्क है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क जो बाप दादा के सीरियल में आता है। बाप को अव्यक्त रूप में सदा साथी अनुभव करना और सदा उमंग उत्साह और खुशी में झूमते रहना। कोई भी बात नीची ऊपर भी हो तो भी ड्रामा को खेल समझकर बहुत अच्छा करती अच्छा बनना और अच्छे बनने के वाइब्रेशन से नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना। अभी पहली बात है कि बाप को सदा साथी समझना। बाप तो साथी है ही, लेकिन हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं कि जब भी लौकिक में कोई साथी होता है, चाहे बहन भाई है, चाहे कोई बिजनेस में साथी होता है, चाहे जीवन में साथी होता है, तुम कैसी कल्पना करते हैं कि साथी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब भी कोई का एंगेजमेंट होता है तो उसी समय उसकी जो खुशी होती है ना, पारावार होती है। और फिर शादी भी होती है, शादी का 15-20 दिन 1 साल उसकी खुशी कितनी होती है। और वो जो इमेज करते हैं कि मेरा साथी जैसा कैसा होगा, क्योंकि उसको वो अपने साथी की इमेज होती है। और सभी को ऐसा होता है कि ऐसा साथी मिले, जो साथी ऐसा होना चाहिए जो हम मतलब कि हमारी एक तो सिक्योरिटी रक्षा करे, हम जहां भी जाए हमारे साथ साथ चले, और हम जहां भी उसको बुलावे, जहां भी हमको हम उसको बुलाए वो हमारे साथ हाजिर हो जाए, और हम जो कहे जैसे कहे वैसे ही करते रहे। वो सबकी इमेज होती है, चाहे भाई हो या बहन हो, चाहे बिजनेस में हो या कहीं भी हो, वो इमेज होती है। और फिर वो इमेज इतनी होते हुए, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा किसी को मालूम नहीं होता है, तो बहुत अच्छी चलता है जिंदगी उसकी 15 दिन 20 दिन 1 साल। फिर 30 साल जब हो जाता है, 20 साल हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो साथी मिले हैं ना वो ठीक नहीं है। क्योंकि लेकिन यहां हम देखते हैं कि जो बाबा मिला है एक साथी के रूप में, तो सबसे पहले कि उसको हम कैसे मतलब कि हमारा कंपेनियन है वो, और ये कंपेनियन कैसा है, कैसा कंपेनियन है हमारा। सभी ने अपना बाबा को कंपेनियन बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है ना। तो जैसे बाबा ने आज भी कहा है कि बाबा से मीठी मीठी रूढ़िहान करना है, जैसे वो साथी से शुरुआत में बहुत मीठी मीठी रूढ़िहान चलती है और जिंदगी भर मीठी मीठी रूढ़िहान चलती भी नहीं है। लेकिन यहां बाबा कहते हैं कि तो बाबा कहते हैं कि यहां तो हर बात को शेयर करें हम, क्योंकि ये साथी ऐसा है कि कहीं भी किसी को भी हमारी कोई भी बात होंगी, चाहे कैसी भी बात होंगी, वो औरों को बताएगा नहीं। और दूसरा है कि हमारा प्यार जो है बाबा के साथ, वो ऊपर नीचे भी हो जाए लेकिन वो तो हमारा हाथ पकड़ के ही रखता है, और कभी भी धोखा देने वाला नहीं है, कभी भी हमारा विश्वासघात नहीं करेगा, ऐसा साथी हमको मिला है। तो बाबा कहते हैं कि वो हमेशा कहता है कि आप इतना बोझ उठा के क्यों घूमते हो, मुझे दे दो, आपको बोझ उठाने की एक प्रैक्टिस हो गई है लेकिन मुझे दे दो। भावनाओं को समझता है बाबा, हमारी बातों को समझता है। हम अगर संकल्प से भी कह देते हैं तो भी अगर हमारे शब्द में ऊपर नीचे भी हो जाए लेकिन हमारी भावनाओं को एक ठीक ठीक समझता है, और लॉयल भी है और ट्रस्टवर्थी भी है। तो ऐसा साथी है जो हम उसका अनुभव करते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बाबा हमको पहचानता होगा कि नहीं पहचानता होगा, शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन धीरे 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 हमको ऐसा हमको एक्सपीरियंस कराता है कि हमको लगता है कि इतने सालों से हम जो बाबा के बन के रहे हैं, तो कितनी परिस्थितियों से हमको उसने पार लगाया है, जब इस परिस्थितियों को याद करते हैं, जब मुश्किलात को हमने उसके जो हमने हमें उस उसने हमको मदद की है उसको याद करते हैं तो हमारी आंखों में पानी भी आ जाता है कि ऐसा साथी हमको, कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो बाबा हमको साथी के रूप में मिला है। दूसरा है कि बाबा जो है वो एक दूसरा बताया है कि उमंग उसार खुशी में झूमते रहना है, और बाबा का हाथ पकड़ के रखते हैं तो खुशी में झूमते ही रहते हैं। तो खुशी में झूमना माना कैसे झूमेंगे, हमारा तो हाथ है लेकिन बाबा को तो निराकार है, उसका तो हाथ नहीं है, तो कैसे उसका हाथ में हाथ रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी साथ और श्रीमत, बुद्धि रूपी हाथ और श्रीमत रूपी साथ हो तो खुशी में रहेंगे। तो बाबा की मुरलियों में रोज रोज कोई ऐसी ऐसी श्रीमत आती, कोई ऐसी ऐसी बातें आती है जो हमें खुशियों में ले जाती है। तो और दूसरी बात है कि कोई कोई साथी ऐसा होता है हर बात शेयर करते हैं तो कहते हैं टाइम क्यों वेस्ट करते हैं हमारा, हमारे को तो बहुत काम है, बिजी है। तो फिर ये बाबा तो ऐसा है कि जितना सुनाओ जो भी सुनाओ वो हमारा सुनने के लिए ही जैसे बैठा है, और उसको अच्छा भी लगता है जब हम उसको बहुत याद करते हैं, उससे बातें बहुत करते हैं तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कितने साल के बाद उसको मिले हैं, कितने साल। कहते मैं बेचैन बन जाता हूँ आपके बिना, मैं ऊपर में रहता हूँ लेकिन इतने समय से आप मेरे से अलग हो गए हो तो मुझे भी बेचैनी हो जाती है। ऐसा कोई कहे कि आप हमको नहीं मिले बेचैन हो जाए, कैसा लगता है? अंदर से बहुत खुशी होती है कि देखो। तो बाबा कहता है लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो बंधा हुआ हूँ ड्रामा के बंधन में, इसलिए मैं तो मेरे समय पर तो आऊंगा ही, लेकिन एक एक चिल्लाते तो मैं नहीं आता हूँ, दस चिल्लाते तो नहीं आता, पूरे दुनिया वाले चिल्लाए तभी मैं आऊंगा ना, नहीं तो कोई को मेरी कदर ही नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं मतलब कि अपने टाइम पे आता हूँ। दूसरा है कि हम जब खुशी में तब रहेंगे जब ही सृष्टि का बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, सारे सृष्टि का ज्ञान दिया है, वो ज्ञान को अगर सब सुमिरन करते हैं, झाड़ के बीज बाबा ने हमको क्या नहीं दिया है उसको हम प्राप्ति को अनुभव करते हैं, प्राप्तियों को याद करते हैं तो हमें खुशी बहुत आती है। जब मनन चिंतन करते हैं, हमने ये जो हमको टॉपिक दिया तो हमने एक और को भी बोला था कि आप नहीं, हमने बोला था कि आप ही मंथन करना, उनके मंथन को हमने लिया नहीं है लेकिन वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि अरे रे बहुत अच्छा, हमारा दो घंटा बहुत अच्छा हो गया चिंतन मनन से। तो बाबा हमारा बॉडी गार्ड भी है, बॉडी गार्ड माना जैसे आपने देखा कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री और जो भी उनके साथ साथी होते हैं उनका बॉडी गार्ड होता है, उनको कुछ देखना नहीं पड़ता है, वो कैसा भी चले कैसा भी, वो लोग इतना कितना ध्यान रखते हैं कि भाई उसको कुछ तकलीफ ना हो जाए। तो बाबा हमारा कैसा बॉडी गार्ड है कि हमारी हर पल रक्षा करता है, हर पल हमारे साथ रहता है। उसको बाबा ने पहले भी बताया कि आप दिल से कहो, क्या कहो बाबा ने बताया ना कि बाबा मेरा साथी मदद करने आ जाओ। तो बाबा कहता है मैं तो बैठा ही हूँ मदद करने के लिए, जैसे दिल से कहते हो तो मैं तो आ ही जाता हूँ। तो बाबा हमारा कैसा है, एकदम हम जो कहते हैं तो बच्चों की पुकार पे आ जाता है, बच्चे बुलाते हैं। संगम की बात, बाबा अभी संगम में हमारे साथ साथ है, जब भी बुलाते हो तो आ जाता है, आत्मा को सुंदर बनाता है। और ये बॉडीगार्ड ले जाता है तो ऐसा थोड़ी सुंदर बना के ले जाता है, अपने परमधाम में ले जाते, अपने घर में ले जाता है। कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है ना, और तो माँ बाप है ना उसको जबरदस्ती से स्कूल में भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको लायक बनाने के लिए, उसको शांति मिले, उसका जीवन अच्छा बने। तो ये बाप भी हमको मतलब कि ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम इतने ठोकर खाई, बाबा ने ऊपर से देखा, हमने तो यही जन्म देखा है, हमारा पास्ट तो हमें पता नहीं इतने जन्मों में हमने क्या क्या किया है, लेकिन बाबा को तो हमारी पूरी जन्म कुंडली सब कि जन्म कुंडली बाबा को पता है, इसलिए उसको पता है उसने कितनी धक्के खाए, धोखे खाए हैं, किस किस लोगों ने उसको कितने धक्के लगाए हैं। तो बाबा आकर के हमको सभी धक्कों से छुड़ा देते हैं। तो मतलब कि जब भी हम ऐसे बाबा को याद करते हैं तो हमारा हमको खुशी भी होती है। दूसरा है कि उमंग गुस्सा कैसे बढ़ता है, जब ये ऐसा संगठन में आते हैं तो खुशी बढ़ती है। कोई ऐसा खेल के संगठन होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में चलती है, वो कस में कस चलता है, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि वो हारने वाले हैं तो लोगों को ऐसा लगेगा अरे रे क्या हुआ, लेकिन एकदम जीत जाते हैं तो सभी कूद पड़ते हैं जैसे वही मैदान में बैठे हैं, ऐसे उसका उमंग गुस्सा बढ़ जाता है। यहाँ भी दादी जी थी तो उन्होंने जब ये ज्ञान सरोवर बना था, हम शांति नीचे भी बना था, तो डेट दिया था और उसी डेट में जब बन जाता था और डेट देते थे और बनता वह सभी बहुत उमंग उत्साह रहता था। और शांतिवन में एक एक कॉम्प्लेक्स में एक एक जगह पे जब भी उद्घाटन होता है सबको दादी कहती चलो चलो, उमंग उत्साह बहुत आ जाता था। तो सबको साथ में चलने से, सबको साथ में रखने से बहुत उमंग उत्साह आता है। तो बाबा ने कहा था, इस बाबा शॉर्टकट भी बहुत दिखाते हैं हमको, बहुत मेहनत देखता है तो मेहनत देख नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि देखो आपको और कुछ भी नहीं करना है, इस एक ही बात करनी है, दुआएं दो और दुआएं लो। शॉर्टकट है, एक्चुअली शॉर्टकट तो है ही नहीं, लेकिन बाबा ने हमको ऐसा बताया कि बस इतना ही करोगे ना तो भी आप संपूर्ण बन जाओगे। फिर बाबा ने अभी दो दिन पहले भी बताया 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या करना है। एक तो बाबा ने बोला कि मीठा बनना है, मतलब मधुर मधुर बोलना है, खुशी में रहना है और प्यार से सबको चलाना है। खुशी में रहना अलग बात है और मीठा बनना भी थोड़ा इससे थोड़ा कठिन है, लेकिन प्यार से सबको चलाना, वो ऐसे तो शॉर्टकट बताया लेकिन है बहुत अभ्यास की बातें हैं। तो बाबा ऐसे ऐसे हमको कभी कभी ऐसी बातें बताते हैं तो हमारा उमंग गुस्सा बढ़ जाता है कि बाबा ने देखो कभी कभी ऐसे वरदान दे देते हैं। कभी कभी बाबा अव्यक्त मुरली जब चलती है तभी ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, तो उसी समय आपने देखा होगा कि लगता है कि आज हम बाबा ने जो भी कहा है, जो भी हमने वायदा किया सब कुछ हम है ना आज नाच शुरू करेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो मतलब कि थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन उसी समय तो ऐसा ही लगता है बाबा कहते हाथ उठाओ, किसने हाथ नहीं उठाया, हम देखते हैं सब हाथ उठाते हैं और एक को देख के सब हाथ उठाते सबको खुशी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की जो पालना है वो पालना कैसी है, शुरुआत में जब पालना दी थी बाबा ने तो रातों रात बैठते थे, बहुत घंटे तक बैठते थे, दूसरे दिन जाते थे, कभी कभी ऐसा भी मौका था। अभी आज बाबा मतलब कि उसके बाद जब आधे घंटे में आते थे तो भी लोग खुश हो जाते थे, और आज अभी वीडियो पर सुनते हैं तो भी बाबा की ऐसी पालना है, बाबा के ऐसा वाइब्रेशन है, बाबा की ऐसी बातें हैं जो लोगों को लगता है कि यही मतलब कि बाबा का आना जाना होता होगा। तो जो लोगों ने साकार में बाबा को जिसने पाया, जिसने देखा है, उनकी पालना, उनका देखना, उसके बाद जो आए उन्होंने भी कोई कमी महसूस नहीं की, क्योंकि बाबा ने कहा कि इन बच्चों को मैंने आह्वान से पैदा किया है, सुख संकल्पों से पैदा किया। और संकल्प की रचना कैसी होती है, बहुत पावरफुल होती है, संकल्प की रचना बहुत पावरफुल होती है। तो बाबा ने कहा कि वो उसी समय ज्ञान जो था वो बहुत ही धीरे 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 सबको दिया, लेकिन अभी आप देखो अभी आने वाले कितने आगे जा रहे हैं। बाबा ने बोला नए नए लोग जो होते हैं, नई नई पत्ती बहुत ही आगे जा रहे हैं। बाबा ने बोला कि बाबा है खजानों की चाबी, और जब भी हम बाबा को बहुत याद करते हैं तो बाबा ने कहा कि जब भी बाबा को एक बार याद किया तो एक जीरो हो गया, लेकिन दूसरी सेकंड को याद किया, जितनी बार याद किया उतना एक के आगे मतलब कि जीरो लगी गया, तो कितना पदम मां पदम पति हम बन जाते हैं। तो यही संगम युग जो है उसमें हमको बाबा मिलता है, हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, हमको बाबा को जितना ज्ञान है, बाबा कहते हैं मैं खाली होकर के जाता हूँ, इतना ज्ञान जितना मेरे में ज्ञान है उतना ज्ञान में बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दे देता हूँ। अभी है तीसरा है कि ड्रामा, बाबा कहते हैं कि ड्रामा जो है ना वो ढाल है। ढाल कैसे है, जब युद्ध के मैदान में जाते हैं ना तो ढाल नहीं होते हैं तो हार जाते हैं, बाबा ने यहाँ संगम युग में हम युद्ध के मैदान में हैं, बाबा ने कहा ये रूहानी रूहानी क्या है योद्धा है, तो रूहानी योद्धा है तो उसको भी अस्त्र शस्त्र चाहिए, है ना, अस्त्र शस्त्र नहीं है तो हार जाएंगे। तो बाबा ने बहुत बड़ी ढाल दिया है, क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सभी मुरझाए हो जाते हैं, तो बाबा कहता है कि ये ड्रामा की ढाल है, उसका हम प्रयोग करते हैं तो बचते हैं। तो विश्व नाटक एक खेल है, जब खेल में हम देखते हैं कि खेलना है तो उसमें खुशी होती है, जब ही पेपर देने की बात आती है परीक्षा होती है तो उसमें घबरा जाते हैं, लेकिन खेल खेलना है तो उसमें कुछ तकलीफ नहीं होती है। खेल खेलने के लिए कोई को कहो तो तुरंत खेल खेलने के लिए चले जाएंगे, पेपर देने के लिए बोलोगे तो आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे। तो विश्व नाटक एक खेल है, और खेल कैसा है, खेल माना ड्रामा। बाबा कहते हैं कि सत्य है फिर न्यायपूर्ण है, हमको कुछ भी होता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई कुछ बोलता भी है, कोई कुछ भी करता है, तो बाबा कहते हैं वो ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है 84 जन्मों में हमने कहीं ऊपर नीचे भी किया होगा। अभी हमारा सेटलमेंट का टाइम हो रहा है, तो सेटलमेंट में तो क्या होता है, तो सेटलमेंट में तो हमने कुछ भी किया है उसका अभी हमको उसका सेटलमेंट करना ही है। कहीं हमने किसी को बहुत ही सताया होगा तो उसको हमको कोई जन्म में नहीं मिला होगा, इस जन्म में आएगा और कहेगा कि इतने जन्मों में हम नहीं मिले अभी मिले हैं। तो हमारा जिसके साथ भी कुछ भी हुआ होगा तो वो जो आया है व्यक्ति परिस्थिति आई उसका दोष नहीं है, लेकिन दोष किसका है, किसका दोष है। बाबा ने कहा किसी का भी दोष नहीं है, हमारा हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, तो चुक्त हो रहा है तो उसमें खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम खुशी हमको नहीं होती है, तो बाबा ने बोला ये ड्रामा की ढाल है, ड्रामा ऐसा है जो बाबा के है कि कोई भी कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब की तकलीफ हो कुछ भी हो लेकिन कल्याणकारी है। और इस सत्य जो है वो अगर हमको मालूम है कि ड्रामा कल्याणकारी है तो उससे क्या होगा, हमको खुशी होंगी, सुखमय होगा। एक मैं स्टोरी बताती हूँ, बताओ क्यों। एक बार है ना, तो बॉम्बे में उषाबेन थी, उषाबेन जो अभी SML कराती है ना, वो उषाबेन अभी गीता का ज्ञान देती है वो, तो उन्होंने है ना, तो एक भाई जो था उसको वो ज्ञान देने जाती थी, बहुत बड़ा भाई था वो, आसामी थी उसकी, बहुत ही अच्छा, फॉरेन में भी जाता रहता था। तो बहन ने कहा होगा योगिनी बहन ने कि आप उसको कोर्स कराने के लिए वहां उनके पास ही जाना, तो चाहती थी आधा घंटा घंटा उससे पूछती थी कैसे हो कैसे नहीं, और आधा घंटा घंटे में वापिस आती थी। तो उन्होंने 7 दिन का कोर्स कर लिया, लेकिन उसका हमेशा कहती थी ये ड्रामा कल्याणकारी, देखो हमको पिता मिला है, बाबा मिला है, भगवान मिला है, कितनी प्राप्तियां कराता है, तो ये सभी बातें रोज रोज बाबा उसको बताती थी वो। तो एक बार क्या हुआ कि वो भाई जो है ना, उसने बहुत अच्छी रीति से बोला कि मुझे अभी 6 मास में अवार्ड मिलने वाला है, तो कितना अच्छा है, कितना कल्याणकारी है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ही 1 मास ही रहा था, उसको भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसका दोनों पांव मतलब फ्रैक्चर हो गया। तो फिर वो मतलब कि जब ही बहन उसको पूछने आई कि आपको देखो क्या हो गया, तो कहते वही ड्रामा कल्याणकारी है, देखो मेरा दोनों ही पांव फ्रैक्चर हो गया, इसको कल्याण कैसे कर सकते, कितना दर्द है मुझे, इतना दर्द में मैं रह नहीं सकता हूँ, अभी अवार्ड लेने जाना है, अभी 1 मास में तो ठीक हो ही नहीं सकता है, क्या करूं मैं, बहुत तकलीफ की बात है, अवार्ड मिलने वाला है, मैंने इतनी मेहनत की है जिंदगी भर, उसका अवार्ड मुझे मिलने वाला है, अभी एक पांव अगर फ्रैक्चर होता तो एक पांव जैसा वैसा करके भी मैं अवार्ड लेने जाता, लेकिन दोनों पांव मेरे फ्रैक्चर हो गए, मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो बहुत ही दुखी दुखी वो रोज ही ज्ञान को भी और बाबा को भी कुछ न कुछ बोलता रहता था। तो बहन ने बताया कि अभी आप नहीं जाओ उसके पास, बहुत तकलीफ उसकी होती है तो नहीं जाओ। 15 दिन ही बाकी था, और 15 दिन बाकी था, तो फिर उसके पास गई तो भी बोलती है देखो अभी ये 15 दिन बाकी रहा है, क्या करूं मैं। लेकिन जिस दिन मतलब कि उनको जाना था, जिस फ्लाइट में जाना था, वो टाइम भी आ गया तो फ्लाइट क्रैश हो गया, उसमें बहुत सारे जल गए मर गए। तो फिर वो है ना, तो फूस हो गया और बहन गई तो बहुत अपनी कुर्सी में बैठे बैठे इतना झूमता था नाचता था, तो उसको डर लगा कि बाबा मैं उसके पास जाऊंगा तो कुछ होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा तो बहुत खुश है, मैं खुश क्यों है, तो गई उसके पास के खुश क्यों है, वो ड्रामा कल्याणकारी है। कैसे कल्याणकारी है, देखो मेरा एक पांव अगर टूटता ना तो मैं जाता, तो मेरा तो खत्म हो जाता। अच्छा हुआ ना दो पांव फ्रैक्चर हुआ, मैं जा ही नहीं सका, वो फ्लाइट तो क्रैश हो गया। तो हमको बाबा का जो ड्रामा का ज्ञान है उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं होता है कभी कभी, कल्याणकारी कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति मेरे को इतना परेशान करता है, कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन बाबा को हमारा आदि मध्य अंत मालूम है, हमारी जन्म कुंडली, जन्म कुंडली हमारी पता है, और उनकी बात नहीं है ना, तो ज्ञान उसने लिया उसकी बात है। वो कह रहा था ना, वो कह रहा था ना कि कल्याण, हाँ ये कल्याण हुआ कि वो गया नहीं तो मतलब उनका तो अभी बाबा जब बताएगा तब बताऊंगी। तो कहने का मतलब है कि बाबा का जो कल्याण की जो रीत हमें मालूम नहीं होती है कि कैसे कल्याण हमारा होगा। हम तो समझते हैं हर बात में, कभी कभी बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं तो ऐसा लगता है, तो ऐसा हमारी जिंदगी कैसी ऐसा लगता है। लेकिन बाबा कहते हर चीज कल्याणकारी है और न्यायपूर्ण है, कल्याणकारी है। तो निश्चय अगर हमको हो जाता है कि हर बात में कल्याण है तो शांति होती है, सुखमय अनुभव होता है, निश्चिंत भी रहते हैं और निर्भय भी रहते हैं। फिर खेल में क्या होता है दूसरा कि अथकपन होता है, अथकपन होता है ना कि थकान नहीं है। अभी देखो आपको पता होगा कि जैसे क्रिकेट मैच चलती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो पहली ओपनिंग बैट्समैन होता है ना वो बहुत अच्छा खेलते 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 थक जाता है, और फिर भी वो मतलब कि पिच पर खड़ा होता है। लास्ट वाला जो आता है ना वो तो वहां ही बैठा है 8 घंटे से 7 घंटे से, आता है तो फटाफट छग्गा चौग्गा मारता है, तो लोग खुश भी हो जाते हैं लेकिन आउट भी हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन बहुत थक जाते हैं लोग, दूसरी मैच होती है तो 2-4 दिन के बाद, तभी वो जो पिच पर पहला आया है उसको बोला अभी आप बहुत थक गए थे ना उसी दिन, आप आज नहीं खेलना। तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, खेल है वो खेलेगा जरूर। तो बाबा कहते हैं कि इस नाटक को यथार्थ हम जब जानते हैं और सत्य अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा ने हर बारी कहा है कि हर एक का पार्ट अपना अपना है और हम किसी का पार्ट बदल नहीं सकते हैं, कोई कैसा भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसका पार्ट हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसका पार्ट को देख करके हम अपने को बदल सकते हैं। जैसे आप किसी के साथ रहते हो तो आप अपना उसी समय आप उनके पार्ट को देखते रहो और अपने पार्ट को देखो, उसका पार्ट जो चलता है ना उसको देखोगे वो कैसे क्या क्या करते हैं, मतलब कुछ ऐसा भी है अच्छा व्यवहार भी नहीं, लेकिन आप है ना उसके कंपैरिजन करो कि बस ये अच्छा है मैं तो बहुत अच्छा, तो आप आगे जाओगे कि पीछे रहोगे। जब भी हम कमरे में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसे कंपैरिजन इस प्रकार से करते हैं ना तो हमको बहुत सुख मिलता है कि वो उसको बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन उनका पार्ट को देखते रहो, पार्ट को देखेंगे ना देखते देखते आपका पार्ट इतना अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि देखो मेरा पार्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अच्छा संकल्प कर सकती हूँ, अच्छी वाइब्रेशन दे सकती हूँ उसको, मतलब कि बहुत तकलीफ उसको है देखो ऐसे जैसे वैसे व्यवहार करते हैं, तो उसका पार्ट को आप देखते रहो साक्षी बन करके। तो फिर तो हम कोई को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बना बनाया खेल है, बना बनाया खेल है तो चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने को क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उसी समय हमें मालूम पड़ता है कि मुझे क्या सोचना है क्योंकि बाबा ने हमको इतना ज्ञान दिया है। इस नाटक जो है उसमें हर कोई भी कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, उसको कोई देखे या ना देखे, हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हम बहुत लोगों के बीच में कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, जैसा भी करते हैं, और बहुत छिप करके भी कोई कर्म करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, हमें पता नहीं, हमें पता रहता है, बाबा को पता रहता है, और जिस प्रकृति के साथ है उसको भी पता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई देखे या ना देखे, जाने या ना जाने, परंतु परमात्मा और प्रकृति उसको जानते ही है, और सृष्टि के नियम अनुसार प्रकृति द्वारा उसको फल अवश्य मिलता ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा समझे कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं जो भी करूंगा फल तो मुझे अच्छा ही मिलता है ना, मैं बेईमानी करूं या कुछ भी करूं, ऊपर से पहले अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से कुछ भी करता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अच्छा देखने से वो अच्छा होता नहीं है, लेकिन अंदर से अगर वो अच्छा ही कर्म करता है तो वो अच्छा ही होता है, तो उसका फल उसको अच्छा मिलता है। फिर इस विश्व नाटक में समय समय के हीरो का विशेष पार्ट अलग होते हैं। जैसे हर एक, देखो आप, कोई व्यक्ति बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाता है, उसको बहुत प्राप्तियां मिलती है, तो हमें उसकी जेलेसी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक का पार्ट समय अनुसार उसकी प्राप्तियां, उसने जो भी, मतलब कि जो भी उसने कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, उसी अनुसार उसको जो फल मिलता है, उस फल उसका, हमें उसका फल छीन नहीं सकते हैं, तो ईर्ष्या करने की जरूरत भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते उसका फल अपना है, हमारा फल अपना है, तो उसका फल देख के उसको बहुत प्राप्तियां हो गई तो हम कहे देखो उसको तो बहुत कुछ मिला, हमको तो कुछ मिला नहीं। चाहे नाम मिले, मान मिले, शान मिले, कुछ भी मिले उसको, स्थूल मिले, सूक्ष्म मिले, तो वो उसका कर्मों का फल है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम समय अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए, व्यक्ति को जो भी मिला है ठीक है, उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। फिर हाँ, वो तो मिलता रहे वो भी नहीं देख सकते हैं, और मिलता रहे बात करते, इसलिए है। फिर ड्रामा को खेल समझते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा 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 है अच्छा है, वो एक फिल्म था ना उसमें आता है, फिल्म है उसमें आता है, याद नहीं आता है, ऑल इज वेल आता है, जब भी कुछ भी होता है तो कहता है ऑल इज वेल। तो बाबा कहते हैं ड्रामा को खेल समझोगे ना, सुबह में उठ करके आप अपने को बराबर तैयार रखना, युद्ध के मैदान में जाना है तो सभी शस्त्र अस्त्र तैयार रखना, क्योंकि अगर हम सुबह में उठ करके तैयार नहीं होते हैं तो जब भी कुछ भी होता है तब हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन सुबह में उठने के बाद क्या करना है, हमको शस्त्र सब सज सज करके बाहर निकलना है कि किसी को कुछ भी हो तो हम तैयार रहें। कहते हैं कि अच्छा अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। तो एक बाबा बात बताते हैं ना कि मैं, कहते हैं कि मैं भैंसू भैंसू नहीं निकल सकता हूं बाहर, तो जब भी हम जैसे सोचता, कोई कहते मैं बहुत बीमार हूं बहुत बीमार हूं बहुत बीमार हूं, तो बीमार नहीं होते हुए भी वो उसके चेहरे पर बीमारी का चिन्ह भी आ जाता है। और कोई कहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से उसको अंदर से लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा स्वस्थ लगता है। जैसे एक भाई था ना, उसको ये सिक्योरिटी में था, उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, पहले तो हमको मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन वो है ना चम्मच ग्लास में रख के टप टप करता था। मैंने बोला क्यों, बोला संगीत बजाता हूँ, संगीत बजाता है। तो कहते हाँ, क्योंकि अपने पास दूसरा तो कुछ है नहीं, सिक्योरिटी में तो यही ग्लास और चम्मच लेके बैठता हूँ, तो मतलब, तो उसको बहुत बड़ा ये हुआ था, कैंसर हुआ था, तो लेकिन वो इतना खुश रहता था, हाँ मतलब इतना अंदर से उसको बहुत खुशी रहती थी। तो जब बहुत खुश होते हैं ना तो दर्द की कम महसूसता होती है, लेकिन जिसको कैंसर होता है ना उसको तकलीफ ओछी होती है, उसके बाहर वाले होते हैं ना जो उसकी सेवा करते हैं उसको बहुत ज्यादा होती है इस, लेकिन जिसको होता है उसको भी बहुत, वो कैंसर नाम ही है ना, और सुनते ही उसका मतलब कि, तो मतलब कि जब भी हम अच्छा सोचते हैं तो क्या होता है, अच्छा अच्छा सोचने से हम अच्छे बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में अगर है ना, तो बाबा ने हमको ड्रामा की ढाल नहीं देते हैं तो आधे ब्राह्मण मर जाते। क्यों? क्योंकि ड्रामा ऐसा है, फुल स्टॉप लगा देता है, ड्रामा ऐसा है कि कहता है कि ये तो बना बनाए खेल है। बाबा ने ड्रामा का इतना नॉलेज दे दिया है तो ड्रामा को समझते समझते हम फुल स्टॉप लगाने, भाई चलो कोई बात नहीं, 5000 साल के बाद ये सीन आएगी, अभी तो नहीं है ना। और बाबा ने बोला एक सीन दूसरी सीन से मिलती ही नहीं है, तो अभी ये सीन जो 5000 साल में अभी आई है लेकिन 5000 साल के बाद आएगी, लेकिन एक सीन दूसरी सीन से मिलती ही नहीं है, तो और कुछ आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो इसलिए हर सीन चेंज होती रहती है। फिर है कि ड्रामा है ना हमारी माँ है, जो माँ होती है ना क्या करती है, शिक्षा भी देती है, सावधानी भी देती है और सिखाती भी है और पालना भी करती है। जब भी माँ बाप होते हैं ना, तो बाप जब बहुत कुछ मारते हैं, कुछ तकलीफ देते हैं, तो माँ उसको अपने को गोद में बहुत ही एक देती है, उसको आथत देती है, उसकी पालना करती है उसको। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा जो है ना, क्या है, माँ है, ड्रामा माँ है। तो माँ का आंचल पकड़ पकड़ करके हमको आगे चलना है। फिर है ड्रामा के ज्ञान से क्या होता है, किसी की अगर किसी को कुछ भी हो गया है तो हम उसकी बुराई है तो बुराई, बाबा कहते हैं कि इसको हमको घृणा नहीं करना है, क्योंकि सबका पार्ट ऐसा है जो इसको बजाना ही है, कुछ भी करो आप उसको बजाना ही है। तो उसको उसका खराब पार्ट है, जैसा वैसा पार्ट है, तो हम क्यों उससे घृणा करेंगे। बाबा ठेकेदार बैठा है, हम क्यों ठेका ले किसी का भी। लेकिन हम जब ठेका लेते हैं तो क्या होता है, तो हम ठेकेदार बन जाते हैं, तम दुखी हो जाते हैं। तो ड्रामा के ज्ञान से बुराई को अच्छा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा फुल स्टॉप लगाने के लिए कहता है ना, ड्रामा बस ड्रामा समझो, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि हमारे पर जो लोगों के पर बीतते हैं, तो हम उसको ड्रामा का ज्ञान देने जाते हैं, लेकिन जब हमारे पर बात आती है तो हम ड्रामा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सुबह में उठ करके क्या करना चाहिए, हमें एक बात अच्छी रीति से ध्यान में देनी चाहिए। हम बाबा के बने हैं तो बाबा के जो भी बच्चे बने हैं ना, वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि लक्ष्मीनारायण बनना है तो हाथ सब उठाते हैं ना, कहने का मतलब कि हर एक को अंदर से लक्ष्य है, चाहे कोई भी हो। पढ़ते हैं ना तो सभी को ऐसा होता है कि मेरा फर्स्ट नंबर आए, सभी को होता है, भले न ना पढ़े तो भी उसको लगता है कि मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, तो सबको अंदर से होता है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ लक्ष्मीनारायण तो एक ही होंगे, लेकिन फिर भी जब बाबा बोलते हैं कि कौन बनेगा, तो लक्ष्मीनारायण बनने के लिए सब हाथ उठाते हैं और राम सीता बनने के लिए कोई हाथ नहीं उठाते हैं, तो सबका लक्ष्य ऊंचा है। तो इसलिए हमको है ना, तो बाबा कहता है कि सभी को मतलब कि समझने के लिए आए हैं, बदलने के लिए आए हैं, संपूर्ण बनने के लिए आए हैं। तो सभी बदलने के लिए आए, तो हम किसी की कमी कमजोरी अवगुण क्यों देखेंगे। तो हर चीज को हमको गुण ग्रही दृष्टि से देखना, विशेषता ही देखना है। बाबा ने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें विशेषता ना हो। अभी बाबा के बनने वाले बच्चे हैं उसमें भी विशेषताएं हैं। तो हर चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करें। कैसे करें, अमृत वेले से एक संकल्प करें, सारे दिन में, सारे दिन के लिए अमृत वेले एक संकल्प करें कि आज हमको किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, न डिस्टर्ब होना है, बस एक संकल्प करना है। कुछ भी हो जाए, डिस्टर्ब होना नहीं है, डिस्टर्ब करना नहीं है। तो अगर हम, और दूसरी बात है कि कोई भी बात को हम रिएक्ट नहीं करना। अभी दो बातें, अगर हम सुबह सुबह में अमृत वेले अगर बाबा को याद करके एक संकल्प लेते हैं ना, तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते हमारे में परिवर्तन आएगा। फिर वाइब्रेशन अच्छा अच्छा बाबा ने बोला ना कि वाइब्रेशन अच्छा अच्छा तो सुबह में उठ करके हमें अभ्यास करना है कि इतना वाइब्रेशन अच्छा अच्छा फैलाए हमारे, जो भी जितने भी हुए, बाबा ने कहा है कि पूरा फोकस सबके ऊपर करो, विश्व के ऊपर, विश्व के ऊपर करते करते हमारे साथी जो है ना उसके ऊपर, ऑफिस में जो बैठते उसके ऊपर, सबके ऊपर करो। क्योंकि विश्व को तो हम बहुत अच्छी सकस देते हैं ना, लेकिन साथ में रहने वाले को साथ साथ सकस देते हैं, तो क्योंकि साथ में काम करना होता है, साथ में रहना होता है, उसको भी सकस बहुत जरूरी है। हाँ, तो अच्छा अच्छा वो भी सकस देंगे, हम भी सकस देंगे, तो दोनों की सकस मिलेगी तो अच्छा है ना। इसलिए इस ड्रामा को हमें बहुत अच्छी रीति से जान करके और बाबा का जो ये महावाक्य है उसको मनन चिंतन जितना करते हैं उतना हमको खुशी रहती है, और ड्रामा की ढाल को याद रखते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची बनती है। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम पवन कुमार है, मैं नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहां से हूँ। ज्ञान में चलते हुए 7 ईयर हो चुके हैं।
बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे, बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने, हमें प्रभु प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। हमसे नालायक को लायक समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, तुमको ही मांग लिया तुमसे अब क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे, बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे।
ओम शांति।